ومن يعشو عن ذكر الرحمن और जो याशु, याशु देखें अब मैंने आपको बताया इसका दो रूट्स बताए, तो आशा याशु से अगर करेंगे तो मतलब क्या है, एराज करना, गफलत बरतना, तवज्जो ना देना, और अगर आशा याशी से करेंगे इसका तो फिर वो जिसकी नजर कमजोर हो गई हो, निगाह की कमजोरी के लिए आते हैं, अंधेपन के लिए भी आ जाता है, तो यानी जो इसीलिए आप देखेंगे कहीं गफलत बरतना भी है और अंधा बनना भी है, दोनों माने लिखे हैं, तो क्योंकि जो बताया गया जो गफलत बरतता है रहमान के जिक्र से, अब देख रहे हैं आप रहमान का लफ्ज कितना आ रहा है, जिक्र किसका, जिक्र से मतलब पहले देख लेते हैं, जिक्र का मतलब है वैसे अल्लाह का जिक्र करना, जैसे सुबह शाम की दुआएं हैं, नमाज है या कुरान है या और अजकार हैं, उठने बैठने सोने जागने की जो दुआएं हैं, ये सारे जिक्र ही है ना, इस कुरान को भी अल्लाह ताला ने अज़िक्र करार दिया है, तो ये भी जिक्र है, ठीक है, तो इसी तरह नसीहत भी, जिक्र को नसीहत के माना भी दिया है, ये नसीहत रहमान की, और वो भी कुरान की सूरत में है, या फिर अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो भी यानी नसीहत की बातें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, तो मतलब ये है कि जो भी रहमान के जिक्र से या उसकी याद से या इस कुरान से या ये जो नसीहत का पैगाम है इससे गफलत बरतता है या अंधा रहता है, अंधा बन के रहता है, फिर उसकी सजा क्या है, उसकी कोई सजा भी है, तो कुरान से गफलत तो सारी दुनिया ही बरत रही है, कौन है जो आज कुरान को जानता है, कौन है जो आज कुरान को जिसने समझा हुआ है, अंधे ही बने हुए इससे, अंधा पढ़ना समझते हैं ना आप, यानी कुरान है लेकिन बस ऐसे जैसे है ही नहीं है, इसी को नहीं तवज्जो देनी, इससे अंधे बन के रहना यही होता है ना अंधापन, आपके सामने चीज है आपको नजर ही नहीं आती, वो तो तवज्जो ही नहीं इसकी तरफ, तो बात सेम ही हो गई ना, इसे गफलत बरतना, इसे तो तवज्जो ही ना देना, तो उसकी भी कोई सजा होती है, ये भी कोई जुर्म है, तो पहले ये पूछते हैं, अच्छा ये कोई फर्ज है कि नहीं है, फर्ज नहीं है तो छोड़ो फिर, लेकिन इसकी कोई सजा होती है, इसको इससे गफलत बरतने की कोई सजा होती है, अल्लाह को याद ना करने की भी कोई सजा होती है, अल्लाह का जिक्र ना करने की भी कोई सजा होती है, कि नमाज छोड़ दी, अल्लाह का जिक्र ही नहीं किया, या कुरान छोड़ा हुआ है, या ये जो अल्लाह ताला ने नसीहत की इसको तवज्जो ही नहीं है, बस डोंट केयर, आप समझते हैं कोई इसकी सजा होगी, यहां पे इसकी सजा बताई गई है, क्या फरमाया, नुकय्यिद लहू शैतानन, हम मुकर्रर कर देते हैं एक शैतान को उसके लिए, फहुवा लहू करीन, तो वो उसका साथी बन जाता है, साथी बन जाता है यानी उसके साथ साथ रहता है, बस फिर सुबह शाम उसका काम क्या है कि वो इसके साथ रहे, और साथ रह के वो क्या कहेगा इसको, आपका क्या ख्याल है शैतान से आप कोई खैर की उम्मीद कर सकते हैं, जिसका साथी शैतान बन गया वो फिर उसको किस तरफ को लेकर जाएगा, कोई खैर की बात तो नहीं करेगा, वो तो जहन्नुम की तरफ ही ले जाने वाला है, जो उसने वादा किया था अल्लाह ताला से कि मैं उसको जहन्नुम की तरफ लेकर जाऊं, तो एक शैतान, क्योंकि एक शैतान क्यों कहा गया, क्योंकि शैतान के जो चेले हैं उसकी जो हिजबु शैतान भी तो है ना, शैतान का भी तो लश्कर है, तो उनमें से एक उसका प्यादा, उसका एक शैतान जो है इसके साथ दुनिया में लगा दिया जाता है, जो इसको नेकियों से रोकता है, बुराइयों की तरफ उभारता है, बुराइयों की अट्रैक्शन देता है, बुराई को मुजयन करके दिखाता है, खूबसूरत करके दिखाता है, उसको पुर रौनक और मजेदार और बड़ा फन करके दिखाता है, वह ये किया जाए, और आखरत में भी उसका करीन होगा, कैसे कि जब ये कब्र से उठेगा तो शैतान इसके साथ साथ होगा, यहां तक कि दोनों जहन्नुम में साथ एंटर होंगे, इसका हाथ पकड़ के रखेगा जब तक जहन्नुम में ना ले जाए, तो जो फिर यहां पे अल्लाह के जिक्र से दूर हुआ उसका साथी इस तरह से शैतान बन जाता है, क्यों, इतनी बड़ी सजा है जो अल्लाह की याद से या इस कुरान से एराज बरतता है, इतनी बड़ी सजा है। यानी उसकी सोबत, उसकी कंपनी किसकी है? कोई कहेगा कि शैतान की कंपनी हो मेरी? परीन वही है ना जो साथी है, जो साथ साथ रहता है बस। फराना कहते हैं उस रस्सी को जिससे दो ऊंट बांधे जाए। देख लें, एक दो ऊंट एक ही रस्सी से बंधे में, ये साथ साथ हैं। तो जिसकी कंपनी शैतान की हो गई, और वो शैतान इंसानों में से भी हो सकते हैं, जिन्नों में से भी हो सकते हैं, इंसानी शयातीन भी तो होते हैं, तो उसका साथी फिर शैतान बन जाता है। वो नहीं उसको आने देता इस तरफ कि अल्लाह के रास्ते की तरफ। आप देखते हैं, अच्छा वो जिन्नों वाले शैतान तो हमें नजर नहीं आते ना, तो हमें इतना पता ही नहीं चलता, लेकिन इंसानी शैतान तो आपके सामने है। दुनिया में बहुत सारे इंसानी शैतान है जो लोगों को बस जो नेकी काम है उससे डिस्करेज करते रहना, उसके ऊपर मजाक उड़ाना, उसके ऊपर ताने देना, उस चीज को हकीर करके दिखाना, उन लोगों को आउटडेटेड करार देना जो अल्लाह की बात मानने लग जाए बस, वो तो उसके ऐसे दरपे हो जाते हैं, ऐसे दुश्मन हो जाते हैं जैसे इनको कुछ कह दिया। अमल दूसरा कर रहे हैं लेकिन वो उनके पीछे पड़ जाते हैं, इंसानी शैतान। और बुराई के कामों के ऊपर बड़ा इनकरेज करते हैं, वो कोई कर रहा हो तो उसके ऊपर बड़े खुश होते हैं, उसको बड़ा अच्छा कहते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो दुनिया में, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसको बहुत इनामात से नवाजते हैं। वो बुराई के काम कर रहा है उसकी बड़ी सपोर्ट करते हैं। तो ये इंसानी शयातीन भी है और एक जिन्नात में से शयातीन भी है। ऐसे लोगों की सोहबतें फिर शयातीन के साथ ही होती हैं, अल्लाह ताला उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है उस शैतान को। वैसे तो हर एक के साथ ही शैतान लगा हुआ है, एक शैतान आपको पता है ना, हर ये ईमान वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लोगों ने पूछा था कि आपके साथ भी कोई शैतान है? आपने फरमाया हाँ मेरे साथ भी, लेकिन वो मुसलमान हो गया। तो यानी हर बंदे के साथ एक शैतान लगा हुआ। हमारा शैतान हमें उकसाता है, हमारे बस उसे डालता है, तो वो एक शैतान अलग है, और एक ये शैतान है जो हमेशा ही साथ लगा रहता है। ठीक है, और इन्ना हम ला यसुद्दूना हम अन सबील, और बेशक वो अलबत्ता रोकते हैं उनको रास्ते से। किस रास्ते से? हक के रास्ते से। हक के रास्ते से रोकते हैं वो उनको, सीधे रास्ते पे सिराते मुस्तकीम से रोकते हैं। यानी ये शयातीन ये काम करते हैं, इन उनका बस एजेंडा ही ये होता है, बस इनको इस तरफ ना आने दिया जाए। वह यह सबूना अन्ना हम मुहतदून, और वो लोग क्या समझते, हम तो बड़े हिदायत वाले हैं, हम तो आप हमें क्या समझते, हम कोई बुरे लोग हैं, आपको क्या पता हमारे दिल का, हम तो बिल्कुल सही चलने वाले, हम तो बिल्कुल खैर के उसके ऊपर है, आप अपने आप को बहुत नेक समझते हैं। उनको अगर बताया भी जाए ना, वो सोचते हैं कि हम बहुत सही काम करते हैं। इसीलिए ऐसे शख्स को अगर आप दीन की भी दावत देते हैं ना, तो वो उल्टा आपके गले पड़ जाता है उसका, क्योंकि साथ उसके शैतान है। वो क्योंकि अल्लाह के जिक्र से दूर रहते हैं ना, तो शैतान उनके ऊपर मुसल्लत हो जाता है। अब आप उनको बताएं भी तो वो कहते हैं हम आपसे ज्यादा हिदायत हो जाते हैं, आप हमें क्या बताएंगे, हमें ज्यादा पता है। और गुमराहियों में डूबे हुए हराम रास्ते पे चलने वाले, वो भी अपने आप को समझते हैं मैं जी मुझसे ज्यादा नेक कोई है ही नहीं, मुझसे ज्यादा अच्छा तो कोई भी नहीं है। आप उनको कह के देखिए हक की बात, खैर की बात, कहते हैं आपको ज्यादा पता है। यानी वो अपने आप को बहुत हक पे समझते हैं। और चले दूसरों की क्या बात करनी, हम अपने आप को देखें कि हम क्या करते हैं, या हम भी तो नहीं कि अगर हमें कोई खैर की बात बताए हम कहें हमें तो ज्यादा पता है, आप हमें क्या बताएंगे, आप हमें क्या कहेंगे। अल्लाह के जिक्र से दूर होना इंसान को कितनी बड़ी सजा से दो चार करता है। इसके अंदर जरूरी नहीं कि वो इसका इनकार ही करने वाला हो, बल्कि बस एराज करता है, तवज्जो ही नहीं देता, इस तरफ आना ही नहीं है। इस कितना बड़ा नुकसान है इसका, लाजमी लाजिम कर देना, कैद मुहैया करना, अल्लाह ताला मुहैया कर देता उसके लिए। बस साथ 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 सारा वक्त शैतान उसके साथ है, इसी वक्त उसका पीछा छोड़ता ही नहीं, हर वक्त ही उसको हराम की तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। और जो अल्लाह की फरमाबरदारी के काम है उनमें सुस्ती, उनमें गफलत, उनके तरफ तवज्जो ना देना, उनको हकीर समझना, इस तरह करता है, उनको मुश्किल करके दिखाता है, साए की तरह साथ साथ रहता है, अलग ही नहीं होता किसी वक्त भी। और उसकी कोशिश यही होती कहीं खैर का कोई काम ना ये कर ले। और देखें आप कि शैतान के हर एक के लिए अलग अलग टैक्टिक्स हैं उसके मुताबिक। कोई तो कुफर पे है तो उसके लिए इस्लाम पे आना मुश्किल कर देगा, कुफर ही उसको पसंद करा देगा। वो इस्लाम के अंदर है तो आप उसको गुनाहों की अट्रैक्शन देगा और नेकी के काम उसके लिए मुश्किल बनाएगा। कोई नेकी की तरफ भी जरा आ जाता है उसके अंदर खलल डालने की कोशिश करेगा और उसको इसके अंदर सुस्ती कराएगा और उसको दूसरे कामों में इतना इन्वॉल्व कर देगा कि वो उसके लिए खैर के काम के लिए वक्त निकालना आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं युआरिद अन ज़िक्री रब्बी यसलुकु अज़ाबन सआदा, ये सूरह जिन में, के जो अल्लाह के जिक्र से इराज बरतता है ना अल्लाह ताला उसको सख्त अजाब में दाखिल फरमाएगा। तो दुनिया में भी देखें ऐसे लोगों के साथ ये शैतान लग जाते हैं और उनको सही रास्ते की तरफ आने नहीं देते, बल्कि इस रास्ते को उनके लिए रुकावटें डालते हैं, मुश्किल बनाते हैं, रोकते हैं इस रास्ते। रोकने के कई तरीके हैं, रोकने का ये भी तरीका है कि वो इतना मुश्किल लगने लगे कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये भी रोकना है। रोकना ये भी है इंसान ये दूसरे कामों में ऐसा इन्वॉल्व कर दिया जाए कि वो इस रास्ते की तरफ आने को अपने लिए मुमकिन ही ना समझ पाए, ये रास्ते पे मैं कैसे आ सकता हूं, मैं तो और चीजों के अंदर इतना मशगूल हूं। अल्लाह का रास्ता उसको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगे, ये उनकी सजा है जो अल्लाह के जिक्र से एराज बदल बरतते हैं, ऐसे अंधे बन के रहते। हम सूरह ताहा में पढ़ भी आए हैं ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया उसके अंदर कि जो भी अल्लाह ताला के जिक्र से अंधा रहता है अल्लाह ताला उसको कयामत के दिन अंधा ही उठाएगा। जो कोई फरमाया उसमें जो कोई मेरे जिक्र से एराज करेगा तो मैं उसकी जिंदगी तंग कर दूंगा, माईशा तन का वहां पे आया, जिंदगी उसकी दुनिया की जिंदगी भी तंग हो जाएगी और क्यामत के दिन उसको अंधा उठाऊंगा, यानी दुनिया से चैन सुकून इत्मीनान उठ जाएगा, वो डिप्रेस रहेगा बेचैन रहेगा, क्योंकि जो सुकून है वो अल्लाह के जिक्र से है। हम सुकून के लिए दुनिया की रंगीनियां, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, इस तरह की चीजों के पीछे भागते हैं, इनमें इंटरेस्ट लेते हैं कि मुझे कहीं सुकून मिल जाए। मगर जब इंसान इन चीजों के पीछे भागता है तो वो देखता है कि उसके बाद भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी रंगीनियां यहां पे रख दी हैं लेकिन सुकून को अपने पास रख लिया, ताकि अगर इंसान दुनिया में डूब जाए तब भी सुकून लेने के लिए अल्लाह ही की तरफ भागे, वो सुकून उसके पास है। बाकी सारी चीजें ये सारी एंटरटेनमेंट की और ये दुनिया में रखी, वो नहीं अल्लाह के पास, अल्लाह ने अपने पास नहीं रखी उनको, दुनिया में रख ली, सुकून अपने पास रखा। अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो तुम्हें अल्लाह की तरफ आना पड़ेगा, तब तुम्हें वो सुकून हासिल हो सकता है। तो और वो कैसे अल्लाह के रास्ते से रोकता है, लहव लाभ में गर्क करवा के, लहव लहव में बेकार चीजों में, खेल तमाशों के अंदर, ऐसी चीजों के अंदर डाल के इंसान को अल्लाह के रास्ते से रोकता है। और शराब और जुए के बारे में भी सूरह मायदा में आता है कि उसके जरिए भी शैतान अल्लाह के रास्ते से रोकता है। जब इंसान अल्लाह का जिक्र नहीं करता, जैसे घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, और जब खाना शुरू किया तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तो शैतान फिर कहता है अपने चेलों से कि आज तुम्हारे लिए सोने की भी जगह मिल गई और खाने को भी खाना मिल गया। और जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र कर लेता है, तो कहता है आज एक रात गुजारने की भी जगह नहीं है और ना शाम का खाना है, जब वो खाने पे भी बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो। इस तरह शैतान इंसान को मुसलसल गमगीन किए रखता है, इस तरह भी वो अल्लाह के रास्ते से उसको रोकता है, मुसलसल गमगीन, मुसलसल डिप्रेस, मुसलसल नेगेटिव थिंकिंग डाल डाल के। वो अपनी ना थूथनी, उसकी थूथनी ऐसे जैसे खंजीर की होती, वो इंसान के दिल के ऊपर रखता है और फूंके मारता है, वसवसे डालता है। जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है पीछे हट जाता है, ये वसवास खन्नास यही है। तो इमाम इब्ने कय्यम लिखते हैं कि जब इंसान सुबह और शाम करे और उसकी परेशानी सिर्फ एक अल्लाह की जात हो, यानी उसकी परेशानी क्या है, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मैंने उसके सामने खड़े होना है, आई मैं कैसे हिसाब दूंगा, मेरे अल्लाह की नजर में मैं इस वक्त कैसी हूं, यानी उसकी सारी परेशानी ना सिर्फ एक अल्लाह की जात बन जाए, तो अल्लाह ताला उसकी सारी जरूरतों को अपने जिम्मे ले लेता है। और फिर वो चीज जो उसे परेशान करे उसको भी अपने जिम्मे ले लेता है, और उसके दिल को अपनी मोहब्बत के लिए और उसकी जुबान को अपने जिक्र के लिए और उसकी आज़ा को अपनी इताअत के लिए लगा देता है। यानी फिर सिर्फ उसको ये फिक्र है कि जब मेरा अल्लाह मेरे से राजी हो जाए, उसकी बाकी सारी फिक्रें अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली, अब उन फिक्रों से उसको आजाद करती है। एक ही धुन उसको लगी भी, अल्लाह की साथ, उसको राजी करना, उसके लिए भाग दौड़, उसके लिए काम कर रहा है, अल्लाह मेरा खुश हो जाए, मेरे अल्लाह के लिए ये, मेरे बाकी सारी फिक्रें अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता। और ऐसे वाकई लोगों को देखा है मैंने, उनके काम कैसे हो रहे हैं और उनके काम कौन कर देता है और किस तरह से हो जाते हैं, और वाकई अल्लाह ने अपने जिम्मे लिए होते हैं। ये नहीं कि कोई गैबी चीजें आके उनके काम कर रही थी, लेकिन बस अल्लाह ताला वो भी उनके काम करा देता है, इतने आसान हो जाते हैं उनके, जो बाकी लोगों के लिए इतने मुश्किल होते हैं, वो अब खप जाते हैं उन कामों में, इनके काम आसानी से होते जाते हैं। उनकी फिक्र जो है ना, वो एक अल्लाह की जात बन गई है, उसकी जरूरतों को भी अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता है, उसकी परेशानियों को भी अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता। और इमाम इब्ने कय्यम फरमाते हैं कि अगर वो सुबह शाम इस हाल में करे कि दुनिया ही उसकी परेशानी हो, तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी, गम और तकलीफों को उस पर लाद देता है, फिर बस उठते बैठते लेटते वो बस एक ही चीज उसके दिमाग पे सवार, उसे उसके नफ्स के हवाले कर देता है, उसके दिल को अपनी मोहब्बत से मखलूक की मोहब्बत की तरफ फेर देता है, यानी बस लोगों की मोहब्बत में ही वो लग जाए और बस उन्हीं को खुश करने के लिए उन्हीं के पीछे भागता दौड़ता रहे, और उसकी जुबान को अपने जिक्र से हटा के लोगों के जिक्र की तरफ लगा देता है, यानी जुबान से भी अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा, लोगों की बातें होती जा रही, और उसके आज़ा को अपनी इताअत से हटा के लोगों की खिदमत में लगा देता है, यानी लोगों को खुश करने के लिए वो बस हलकान रहता है। यानी अल्लाह ताला फेर देता है ना, अपने लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं वो कोई काम करता, बस लोगों के लिए काम कर रहा है, और वो ऐसी मुशक्कत उठाता है जैसी जंगली जानवर मुशक्कत उठाते हैं, यानी लगा हुआ है जानवरों की तरह, लगा हुआ है गधों की तरह काम करता है, ना लोग खुश होते हैं, ना उसकी फिक्रें खत्म होती हैं, ना परेशानियां खत्म होती हैं। अल्लाह अकबर, कितनी ट्रू है ना ये बात। वाकई जब इंसान ये अल्लाह की रजा से ज्यादा लोगों की रजा मकसूद होने लगे और लोगों के पीछे ही वो भाग रहा है, लोगों के पीछे ही वो अपनी नमाजें छोड़ रहा है, कभी लोगों की खिदमतें करने के लिए वो मैं उसके लिए जा रही हूँ, मैं ये मेहमान नवाजियां कर रही हूँ, मैं फलां चीज कर रही हूँ, उनके पीछे ही भागता जाता है, तो अल्लाह ताला बस उसको इन्हीं चीजों के अंदर डाल देता है। तो अल्लाह का जिक्र में सुकून का बायस भी है, अल्लाह के जिक्र के जरिए इंसान अल्लाह की जात से जुड़ा रहता है और शैतान से महफूज रहता है, वरना शैतान उसका करीन बन जाता है। जब इंसान अल्लाह के जिक्र से अरसे तक दूर रहता है और इससे गाफिल रहता है, अंधा रहता है, तो बस शैतान उसका साथी है, फिर उसे कोई खैर की उम्मीद नहीं कर सकते। और ये सुकून बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है, ये दुनिया के मालदारों को, पैसे वालों को भी नहीं मिलती, इतनी बड़ी दौलत है ये सिर्फ अल्लाह के पास। लोग इसके लिए मारे मारे फिरते हैं, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि सुकून हासिल हो रहा है, चाहे कोई शराब भी इसलिए पीते हैं कि सुकून मिल जाए मुझे, मेरे गम दूर हो जाएं, गम गलत करने के लिए मैं पीता हूं। तो देखो सुकून फिर भी नहीं उनको मिलता, क्योंकि ये सुकून अल्लाह के पास है। शैतान जिसका करीन हो जाएगा उसको कहां से सुकून मिल सकता है। इसलिए इस जिक्र के साथ जुड़े रहना इंसान की जरूरत है, अल्लाह की जरूरत नहीं है। ये मैं कोई अल्लाह ताला को कोई फेवर दे रही हूँ, कोई एहसान कर रही हूँ, मैं जी बड़ी इधर को आ गई तो पता नहीं कितनी मेरी वजह से दीन को कोई अरूज मिला, नहीं, मैं अपने लिए भला कर रही हूँ। जब इंसान अल्लाह के जिक्र के साथ लग जाता है ना, तो उसका शैतान जो है ना थक जाता है। इसीलिए एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि अपने शैतान को थका दो अल्लाह का जिक्र कर करके। इतना अल्लाह का जिक्र करो कि वो थक जाए, उसको समझ ही ना आए मैं थक गया हूं इस बंदे को हटा हटा के, ये हटता ही नहीं इस रास्ते से, वो थक जाए। इतना आप अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह के जिक्र के बड़े फवायद हैं। अल्लाह ताला का जिक्र जो इंसान करता है वो उसका दिल आबाद रहता है, और जो जिक्र से दूर रहता है तो उसका दिल ऐसे है जैसे मुर्दा हो चुका है। एक मुर्दा और जिंदा में अल्लाह के नजदीक यही फर्क है। हत्ता इजा जा अना, हत्ता के जब ऐसा शख्स हमारे पास आएगा, कौन सा, वो जिसकी बात हो रही है ना कि एक वो बंदा है जो अल्लाह के जिक्र भी तवज्जो ही नहीं करता, अंधा बन के रहता है, उसको कोई परवाह ही नहीं है, वो तो सारी दुनिया की परवाह उसको है, लेकिन जो कुरान है, जो ये नसीहत है, अल्लाह का जिक्र है, जो दिलों की जिंदगी है, इससे दूर रहता है। अब दूर रहते रहते दिल की रोशनी कम होते होते खत्म हो गई, और बस मुस्तकिल अब शैतान उसका दोस्त बन गया। अब इसी तरह जिंदगी गुजारता रहा कि शैतान उसको फिर आने ही नहीं देता था इस रास्ते की तरफ, और वो अपने आप को देखिए ये कितनी बड़ी कितना बड़ा एक धोखा कह सकते हैं, जो इंसान अपने आप को देता रहता है ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हर एक को लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसके बाद जब इंसान का एंड आता है तब पता चलता है ना, तब आंखें खुलती हैं, वो ये तो गलत था जो मैं कर रहा था, मैं कहाँ ठीक था। एंड देन द लास्ट लाफ इज ऑफ शैतान, शैतान की विक्ट्री हो गई ना फिर, लास्ट लाफ शैतान को नहीं देनी। याद रखें कि हम मरने लगे तो उस वक्त शैतान खुश हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। जाता कि अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा शख्स जो हमारे पास आएगा ना कयामत के दिन, हाल या लई तबीनी व बईने का बादल मशरिकैन, उस वक्त कहेगा फिर हाय काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब जितनी दूरी होती। अब तो उसको देख भी सकता है उस शैतान को, दुनिया में तो नहीं देख सकता था, तो वसवसे थे। इंसान बुरे काम करके समझता रहता था ना कि मैं सही हूं, अब आंखें जब खुली हैं, अब आगे हलाकत नजर आ रही है, तो अब कहता है हाय काश इसकी और मेरे दरमियान तो इतना फासला होता जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान, इतनी दूरी होती, मैं इसको शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उस दिन भी ये कहा कि आज भी नहीं देखना चाहता, और दुनिया में भी काश ऐसा होता। हालांकि दुनिया में तो उसने साथी बना लिया था इसको, और साथी तभी बनता है जब इंसान अल्लाह की जिक्र से दूर रहता है, उसकी याद से दूर रहता है, उसके कुरान से दूर रहता है। इसने ऐसे ही जिंदगी गुजार ली, शैतान इसको थपकी देता गया देता गया, तू अच्छा कर रहा है, तू बड़ा सही चल रहा है, तुम्हारे अंदर क्या बुराई है, ऐसे ही इन्होंने बनाया हुआ, ऐसे ही डराते रहते हैं, कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो इसी धोखे के अंदर पड़ा रहा, और जब अब वहां पहुंचा अल्लाह, तो आप देखा हो आता है ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें उनका बताऊं जो अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा खसारे में है, अल्लदीन अतल्ला सायुम फिल हयात दुनिया हम या सबूना अन्ना हम होता तू, जिनकी सारी जिंदगी की जो कोशिश और भाग दौड़ थी ना वो इसी दुनिया के अंदर ही गुम हो गई, वो सारी भाग दौड़ इसी के लिए थी, इसी में गुम हो गई, और वो क्या समझते हैं कि वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, वो दुनिया में ही गर्क रहे, दुनिया के कामों में वो अपने आप को लगाए रखा, उनकी सारी कोशिश वहीं गुम होके रह गई थी। और वो क्या समझ रहे थे कि वो ठीक है? इससे ज्यादा बदबख्ती क्या होगी इंसान की कि उसको ये एहसास ही खत्म हो जाए कि मैं गलत कर रहा हूं। कभी जिसको एहसास हो जाए ना कि नहीं, मैं सही नहीं चल रहा, मुझे अपने आप को सही करना है, वो तो फिर भी शायद कभी समर जाए, कोई उसकी सलाह हो जाए। लेकिन जो सोचता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे क्या बताएंगे, मैं बिल्कुल सही हूं, मैं नेकी तो हूं, उसको कौन बता सकता है? वो कैसे अपने आप को सही करेगा? वो तो अपने आप को खुद ही नेक समझता है। हमारे अंदर गलती क्या है? कुछ भी नहीं गलत है। तो क्या हो गया अगर ये करते हैं तो क्या, इससे फर्क क्या पड़ता है, सारे ही करते हैं। ऐसे शख्स को कौन सही कर सकता है? अल्लाह हू अकबर। आदर समूद भी अपने आप को बड़ा अकलमंद समझते थे, बहुत समझदार। हमसे ज्यादा अकल वाला कौन होगा? हमसे ज्यादा अच्छे काम करने वाला कौन होगा? और फिर देखो उनके साथ क्या हुआ। तो उस दिन कहेगा फबिसल करीन, कितना बुरा साथी है ये, क्योंकि इसने बेड़ा गर्क कर दी। वाकई सोहबत का तो असर होता है ना, इसीलिए पैगंबरों ने भी सालेहीन की सोहबत मांगी है, दुनिया में भी और आखरत में भी, दुआओं में से है कि अल्लाह ताला हमें सालेहीन का साथ अता फरमान। और कहा ये कि शैतान परीन बन जाए। वलय अनफाव उमुल यौमा, और हरगिज नहीं नफा देगा तुमको आज, ए जलम तुम, जब जुल्म किया तुमने, अन्नकुम फिल आजाबी मुश्तरिकून, तुम अजाब में अब मुश्तरिक हो, सब कंबाइन हो एक ही अजाब में। जब तुम जुल्म करके आ गए तो अब अपनी जानों पे खुद ही जुल्म किया ना, तो अब तुम्हें इस बात से कोई फायदा नहीं होगा कि हाय मेरे और इसके दरमियान इतना फासला हो जाए और दूरी हो जाए और ये कितना बुरा है और ये ऐसे है, इन बातों से अब कोई फायदा नहीं होना। अब तो अजाब के अंदर तुम सब इकट्ठे हो। उस दिन ये जो ऐसे जालिम, ऐसे जिनके साथी शैतान बने हुए थे, उस दिन तो ये अपने हाथों को चबाएंगे। कुरान में आता है ना, ये अपने हाथों को चबा चबा के कहेंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया उस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा, कहेगा काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता, काश मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता। ये शैतानी इंसान भी तो होते हैं ना, काश मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया, और शैतान दोस्त बना रहा। अभी इंसानों के भेस में और जिन्नों वाले शैतान तो हैं ही। अल्लाह अकबर। लेकिन इससे कोई फायदा होगा उसके ये काश कहने से, ये विशफुल थिंकिंग से कोई फायदा होगा? अब नहीं, अब कोई तसल्ली नहीं है तुम्हारे लिए, कोई लौटना नहीं है तुम्हारे लिए। कोई ये नहीं कह सकता मेरा क्या कसूर था, इसने मुझे कराया। हम दुनिया में तो ये कह के बरी जिम्मा होने लगते हैं ना, मैं क्या करती, इसने करा दिया था, उसने ये कह दिया था, उसने ये मुझे ले गई थी, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, उसने मुझे बातों में लगा लिया था, मैं तो उसकी बातों में आ गई। यहां पे शायद कोई गेट अवे हो जाए इससे, लेकिन कयामत के दिन इन इन बातों से कोई फायदा नहीं होगा। कहा जाएगा आज हरगिज नहीं नफा देगा तुमको ये। और ये भी कि तुम अजाब में सारे एक साथ हो, यानी ऐसा नहीं होगा कि किसी को कम किसी को ज्यादा, तुम दोनों ही अजाब में हो। और ये चीज भी इंसान को कोई तसल्ली नहीं दे देगी कि चलो मैं अजाब में हूं, वो भी तो अजाब से है ही रहा है ना। दुनिया में होता है ना, किसी के ऊपर गम आता है तो वो दूसरे की मुसीबत वैसी ही हुई पड़ी हो तो वो कहता है कि अच्छा उसको तसल्ली हो जाती, मैं अकेला नहीं हूं, देखो इसके ऊपर भी तो मुसीबत है, पता नहीं इसके ऊपर शायद मेरे से भी ज्यादा है, तो इंसान को थोड़ी तसल्ली होती। वहां पे इस चीज से तसल्ली नहीं मिलनी कि देखो सारे ही तो जल रहे हैं, अगर मैं भी जल गया तो क्या हो गया, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। और दूसरे वहां पे कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं होगा कि इंसान को तसल्ली दे दे। तसल्ली देने से भी चलो थोड़ी बहुत इंसान की तकलीफ कम हो जाती है कि कोई थोड़े तसल्ली के बोल बोल देता है, कोई थोड़ी हिम्मत हौसला इंसान को मिल जाता है, वहां पे वो भी नहीं कोई होगा। और कोई होता भी अगर तसल्ली देने के लिए, तब तब भी कोई फायदा ना होता। अव्वल तो होगा ही कोई नहीं, लेकिन देखे ना आप दुनिया में भी बाज दफा ऐसा नहीं होता कि अगर इंसान किसी बहुत शदीद किसी तकलीफ से गुजर रहा हो, या कि कोई किसी के ऊपर कोई अल्लाह ताला महफूज रखे कोई गम का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हो और कोई दूसरा आके तसल्ली दे ना, तो वो आगे से यही कहता है कि मेरी तकलीफ को तुम क्या जानो, ये तो मैं ही जानती हूँ जिस चीज से मैं गुजर रही हूँ। ऐसे कहते हैं ना, ये तो मुझे ही पता है या मेरे अल्लाह को पता है कि मैं किस चीज से गुजर रही। तो बाज दफा दुनिया में भी तसल्ली देने से कोई तसल्ली नहीं होती, लेकिन उस जहन्नुम के अजाब के अंदर तो कोई ना तसल्ली देने वाला होगा, और अगर होता भी तो उससे कोई फायदा ना होता, और ना ही दूसरों को देख के जरा हिम्मत हौसला होगा कि अच्छा मैं अकेली नहीं हूं सारे ही हैं इसके अंदर, ना उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इंसान उस दिन कितनी बेबसी के आलम में होगा, किस तरह से वो गेट अवे नहीं कर सकेगा इस चीज को कहने से कि आए काश मैं तो शैतान का, बस अब क्या फायदा कहने का। अफ अंता तुस्मिउ सुम औ तहदिल उमिया अमन काना फी दलाले मुबीन। ए नबी आप सुनवाएंगे बहरों को, ये विद्युत बहरे हो चुके हैं, इनको कोई असर नहीं हो रहा, ये तो ऐसे कर रहे हैं कि इनको बात सुन ही नहीं रही, सुना सुना के भी फिर भी हिदायत नहीं पा रहे हैं। या आप क्या हिदायत देंगे? देखिए इससे पता चलता है ना, एक तो होता है कि इंसान किस चीज से उसके ऊपर असर होता है, या तो कोई बात सुनता है तो फिर कोई उसको कह दे भैया ये रास्ता गलत है इस पे ना जाओ, सुन लिया उसने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन अगर कोई बहरा है उसके आगे कितना मर्जी बोलते जाओ उसको सुन ही नहीं रहा उसको, तो वो क्या रास्ता बदलेगा। दूसरा बंदा है आप उसको कहते नहीं वो उस रास्ते की तरफ जाओ, इशारा कर रहे हैं लेकिन वो अंधा है अगर, तो उसको तो कोई पता नहीं चलेगा। और वमन का नफी दुलाल मुबीन, यहाँ जो खुली गुमराही में, यानी ये अंधे और बहरे हो चुके हैं, आप सुनवाते भी जाएं ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। बास दफा वाकई ऐसे होता है, इंसान को लगता है दीवार में टकरे मार रहा है, कहते जाओ लेकिन जैसे सुनना ही नहीं, जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, आप उसको कैसे हिदायत देंगे जो अंधा हो चुका। राह दिखाना हो तो उसको ना जो राह देखना चाहे, वो तो उसने देखनी नहीं, आप उसको बताते जा रहे हैं, वो तो इशारा भी करते जा रहे हैं, वो नहीं देखना चाहता ना सुनना चाहता, जो बिल्कुल गुमराही में डूब चुका है। तो आप भला कैसे आप उसको हिदायत दे सकते हैं, कैसे आप उसको सुनवा सकते हैं? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से तसल्ली दी गई कि कुछ लोग अंधे बहरे आपका कसूर नहीं है, आप अपनी जान को इनके पीछे हलकान ना करें, हलाक ना करें, ये जब बहरे हो चुके हैं अंधे हो चुके हैं गुमराही में डूब चुके हैं तो इनको कैसे आप राह दिखाएंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिरस बहुत ज्यादा थी ना, आए काश ये आ जाए इस तरफ। तो इनके साथ अपनी इतनी एनर्जी लगाना और अपने इतनी फिक्र करना और इतना गम करना, इसकी जरूरत नहीं है, ये पत्थर है, वाकई दिल पत्थरों की तरह हो जाते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त अल्लाह ताला ने फरमाया। तो एक दाई दीन के लिए इसमें तसल्ली है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी थी, और वो दाई दीन जो अल्लाह के दीन के लिए बहुत कोशिशें कर रहा हो लेकिन दूसरे को हिदायत फिर भी ना मिल रही हो, कोई सुन ही नहीं रहा, तो वो ये ना सोचे कि पता नहीं मेरा को कसूर है, बल्कि बाज लोगों में हिदायत पाने की इस्तेआत ही नहीं रहती। अल्लाह अकबर, इससे पता चलता है कि जब इंसान सुनना बंद कर दे तो फिर उसको हिदायत नहीं मिल सकती। अगर सुनी अनसुनी करते हैं, जिक्र की मजलिस में बैठ के भी ऐसे हैं कि जैसे सुम्मुन बुकमुन, ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं ना बोल रहे हैं, सुम्मुन बुकमुन उम्यून बने हुए, तो कोई राह नहीं दिखा सकता। कोई आपको कितनी क्लासों में बैठ जाएं, कितनी दरसों में बैठ जाएं, कितनी ऐसी मजलिसों में चले जाएं जो अल्लाह के जिक्र की हो, फिर भी अगर अंधे बहरे बने रहेंगे कौन दिखा सकता है रास्ता? सर्टिफिकेट ले लेंगे, डिग्रियां ले लेंगे, हिदायत फिर भी नहीं मिलेगी। इसके लिए कान खोलने की जरूरत है, दिल की आंखें खोलने की जरूरत है, ये तलब जरूरत है कि मुझे राह दिखाओ, मैं राह देखना चाहता हूं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये तड़प जरूरी है, और ये तड़प है ही नहीं है। हमें तो खुद ही पता है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, और वही रास्ता सही है, और हम ठीक ही तो हैं, फिर क्या कौन बता सकता। नबी का फिर अगर हम ले जाएं आपको, इन्ना मिनहुम मुंतकिमून, तो हम इनसे तो इंतकाम लेने वाले हैं। अल्लाह ताला ने ये इसलिए फरमाया कि काफिर जो थे ना, वो कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारी ये मुश्किल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे तो हमारे लिए मुश्किल खत्म हो जाएगी, हम ये या तो फौत हो जाएं या इनके ऊपर जो कुछ भी हो जाए, ये ना होंगे ना तो सारा वैसे ही हो जाएगा जैसे कि पहले था, हम आराम से रहते थे, अब क्या ये हमारे ऊपर मुश्किल आ गई है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी, अगर हम आपको ले भी जाएं, यानी फौत भी कर लें, तब भी इनके से तो अल्लाह ही इंतकाम लेगा, ये तो फिर भी नहीं बच सकते। औ नुरियन्नक अल्लज़ी वअदनाहुम, या हम आपको दिखा भी दें, आपको इतनी जिंदगी भी दे दें, यानी आपके जाने से ये नहीं हो जाएगा कि इनकी छूट हो जाएगी, इनके पास तो हक आ चुका, हुज्जत तमाम हो गई। अल्लाह ताला का नाम मुंतकिम नहीं है, इंतकाम लेने वाला ये अल्लाह का नाम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इंतकाम लेता है, ठीक है। और औ नुरियन्नक अल्लज़ी वअदनाहुम, या हम दिखा दें आपको वो चीज जिसका वादा किया हमने इनसे, यानी अजाब, कि अगर अगर ये ना माने तो अजाब आएगा, अगर हम आपको दिखा भी दें, फ इन्ना अलैहि मुक्तदिरून, तो बेशक हम इन पर कुदरत रखने वाले, यानी आप जिंदा रहें या ना रहें इससे फर्क नहीं पड़ता, आप देखें या ना देखें, हम अगर इनके ऊपर अजाब का वादा जो हमने इनसे किया है वो आपको दिखा भी दें, तो भी हमारी कुदरत है, अल्लाह की ताकत है, और अगर हम आपको उठा लें तो तब भी आपके पीछे से अल्लाह ताला इनसे बदला लेने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, कि बेशक अल्लाह अज्जा वजल जब अपने बंदों में से किसी उम्मत पर रहमत करने का इरादा फरमाता है, तो उस उम्मत से पहले उस नबी की रूह कब्ज फरमा लेता है, फिर इस नबी को इस उम्मत के सामने मेहरबान पेशरौ बना देता है, और जब किसी उम्मत की हलाकत का इरादा फरमाता है, उसके नबी की जिंदगी में उसको अजाब में मुब्तला करके हलाक कर देता है, और वह नबी इस उम्मत को अजाब में देखता है, फिर इनकी हलाकत से उस नबी की आंखें ठंडी कर देता है, क्योंकि उन्होंने उस नबी को झुटलाया और उसके अहकामात की नाफरमानी की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, और कुरान करीम में आता है ना, वमा कान अल्लाहु लियअज़िबहुम वअन्त फीहिम, ए नबी जब तक आप इनके अंदर हैं अल्लाह इनको अजाब नहीं देगा, आपकी जात रहमत थी, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले तो मक्का वालों के ऊपर ये मुश्किलात आई कि अल्लाह ताला ने उनके बड़े बड़े सरदारों को बदर के अंदर हलाक कर दिया, ये भी एक अजाब की किस्म थी, आपको आपकी आंखों से भी दिखाया, एक छोटा अजाब था, मतलब वो बड़ा वाला तो नहीं, लेकिन छोटा एक उनके लिए अजाब आया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, तो आपके जाने के बाद भी जो लोग आपकी तालीमात को नहीं मानेंगे तो अल्लाह ताला इंतकाम लेगा। फस्तमसिक बिल्लदी ओहिया इलेका, तो ए नबी आप थाम के रखें उसको, किसको, जो वही की गई है आपकी तरफ, इन्नका अला सिरात मुस्तकीम, आप बिल्कुल सीधे रास्ते पे हैं, यानी जो पैगाम, जो वही का पैगाम आपके ऊपर अल्लाह ताला ने उतारा है ना, ये नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आपने लोगों को तो पहुंचा देना, खुद बेशक आप कुछ ना करें, जैसे आप देखते हैं ना ये बड़े बन के बैठे होते हैं बहुत बड़े बड़े पीर जी, हमें तो नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जो इतने पहुंचे में इनको नमाज की क्या जरूरत, ये तो हर वक्त मुराकबे में ही होते हैं, ये तो पता नहीं कौन सी मजलिसों में होते हैं, ये तो पता नहीं किस रसूलों के साथ और उनके साथ बैठे होते हैं उनकी मजलिस में, ये कहीं और पहुंचे में है, इनको कहाँ नमाज, और उसका ये तो हमारे जैसे लोगों के लिए नमाज को पढ़ना, ये करना ये करना, इनके क्या है ना, वो कुछ करते हैं ना, बस एक बस योगा पहन के बैठे हैं, पता नहीं कौन कहाँ पहुंचे हैं, आंखें ऊपर को चढ़ी हैं, ये कौन सा दीन है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भी फरमाया, नबी आप इस तिमसाक क्या है मजबूती से थामना, ऐसे भी नहीं है ढीला डाला भी नहीं, मजबूती से थाम ले ए नबी, आप उसको जो वही किया गया आपकी तरफ, यानी सबसे पहले आप इसके ऊपर अमल करें, आप इस पे अमल करें, आप सीधे रास्ते पे, यानी ये अमल करें ना करें, ये इस तरफ आए ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पूछ नहीं है, आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, मगर आप अमल करें इसके ऊपर, यानी आपको भी एब्जॉर्ब नहीं कर दिया अल्लाह ताला ने कि आपको जरूरत नहीं है, आप बस इन तक पहुंचाएं, आपको क्या जरूरत है, आप तो खुद इतने बड़े मकाम और मर्तबे पे हैं, आपको क्या जरूरत है आप नमाजे पढ़ें और ये इतनी रात को उठ के इबादत करें और तहज्जुद के लिए खड़े रहें और आपके पैर सूज रहे हैं और ऐसा, और आपको क्या जरूरत है, नहीं, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वही को अपने अमल में लाए और सबसे पहले खुद अप्लाई किया। तो ये जितने लोग इस तरह की बात करते हैं ना, वो सब झूठे हैं जो ये कहते हैं अब ये इतने बड़े मर्तबे पहुंच गए, इनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बरी नहीं थे तो और कौन हो सकता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के ऊपर अमल करके दिखाया तो और कौन इसे ऊपर अबव हो सकता है। और यही हमारे लिए भी है कि हम ठीक है, बाज दफा हम इस किताब को आगे पहुंचाने की तगोदौ में इतने लग जाते हैं ना, खुद अमल करना ही भूल जाते हैं कि हमने खुद भी करना है, तो पहले खुद इसके ऊपर चलने के लिए कोशिश करें, इसको मजबूती से खुद थामें, दुनिया को आपने पहुंचाना है, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो ठीक है, लेकिन अपने आप को ना भूलें कि हमने भी तो अमल करना है, ये नहीं कि मेरी नमाजें जा रही हैं लेकिन मैं दर्स देने के लिए कहीं पहुंची हुई, ये नहीं कि मुझे अपनी परवाह है नहीं लेकिन मैं लोगों की बस बड़ी मुझे खैर खाई है, मैंने उनको जहन्नुम से बचाना है, खुद मुझे जहन्नुम से बचने की कोई परवाह नहीं। तो ठीक है, लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन सबसे पहले इंसान की जिम्मेदारी अपनी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम, पहले अपने आप को बचाओ, सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी इंसान की होती है कि वो इस पे अमल करे, ये नहीं कि दूसरों की फिक्र में वो खुद अपने आप को भूला हुआ है, बस दूसरों को ही बताया जा रहा है। और दूसरा, इंसान के लिए जो ताई दीन सच्चा है उसके लिए तसल्ली भी है, ठीक है आप तो सीधे रास्ते पे हैं, आप चलते रहें, आपका काम बता देना था, इनके से पूछ अल्लाह ताला खुद ही करेगा, आपने पहुंचा दिया है, आप बस इसके ऊपर खुद चलते रहें और मजबूती से इसको थामे रखें। वा इन्नहू लज़िक्रुन लक वलि क़ौमिक, और ये जिक्र है आपके लिए और आपकी कौम के लिए, ये कुरान याद दहानी है और ये कुरान शर्फ है, देखें ये बड़ी बात इसमें बताई गई, जिक्र मतलब ये कुरान, और जिक्र का मतलब यहाँ पे शर्फ भी है, ये शर्फ है आपके लिए, इन्नहू का जमीर किस तरफ जा रही, कुरान की तरफ, ला जिक्रो शर्फ है और नसीहत है, इसको सही कर ले कि इन्नहू, हु की जमीर कुरान की तरफ है और जिक्र से मुराद दो चीजें, नसीहत और शर्फ, यानी ये कुरान आपके लिए और आपकी कौम के लिए नसीहत भी है, ये नहीं कहा गया कि आपके लिए तो जरूरत ही नहीं है, अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो जरूरत थी तो मुझे और आपको नहीं जरूरत, याद दहानी की नहीं जरूरत, हम तो अपने आप को इतना ही समझते हैं कि हमें क्या जरूरत है याद दहानी कराने की, हम सब कुछ पहले ही हमें याद है, और आपकी कौम के लिए, कौम से मतलब कौन है, यानी आपकी कौम से मुराद कुरैश भी है और आपकी उम्मत भी है, तो दोनों मतलब है इसके, यानी कुरैश के लिए भी नसीहत और आपकी सारी उम्मत के लिए भी इसमें नसीहत है। नंबर टू माना, शर्फ है, ऑनर है, ये ऑनर का बायस है, किसके लिए, आपके लिए भी, कि अल्लाह ताला ने ये कुरान जैसी इतनी बड़ी रहमत आपके ऊपर नाजिल फरमाई, अर रहमान अल्लाम अल कुरआन, रहमान ने ये कुरान नाजिल फरमाया, कुरान के नजूल से पहले अल्लाह ताला का जो सिफाती और बास कहते हैं जाती नाम भी अर रहमान है, वो अल्लाह ताला लेकर आया, वाकई कुरान अल्लाह ताला की रहमत है, क्योंकि देखें ये आयत नंबर 36 में भी जिक्र रहमान, रहमान का जिक्र है उससे लोग मुंह मोड़ते हैं। हालांकि रहमान के जिक्र से तो मुंह मोड़ना ही नहीं चाहिए, अल्लाह ताला रहमान है, देखिए रहमत कौन नहीं चाहता, और वो सरापा रहमत है, रहम ही रहम है, उसकी तरफ से आने वाला जिक्र, तो इंसान को तो उसकी तरफ भागना चाहिए। जिक्रुल्लाह नहीं कहा गया, देखिए ना आप नोट करें, जिक्र रहमान, रहमान का जिक्र है, तुम उससे मुंह मोड़ते, तुम्हारी अकलों को क्या हो गया? ये तो रहमान का जिक्र है, उसकी तरफ से याद दहानी है, उसकी तरफ से नसीहत है, तो उसकी तरफ से आने वाली नसीहत, उसकी तरफ से आने वाला यह कुरान, तो ए नबी आपके लिए भी बड़े शर्फ की बात है और आपकी उम्मत के लिए भी बहुत शर्फ की बात है। कौमी का से अगर हम उम्मत लें तो आपकी उम्मत के लिए भी बड़े शर्फ की, बड़ी इज्जत की बात है। देखिए ना कितनी बड़ी इज्जत की बात हमारे लिए जाती है जब हमें मसलन कोई आज के दौर में मिसाल के तौर पे हमें जब कहा जाता है कि भाई देखो भाई साइंस ने भी ये प्रूव किया, ये तो कुरान में पहले ही, तो हमें इतनी खुशी होती है, ये देखा कुरान हमारा हक है। और फिर जैसे इतनी खुशी होती जब कोई कुरान को पढ़ के इसकी तरफ आता है और मुसलमान हो जाता है, तो हमें कितनी खुशी होती है कि वाकई कुरान हक है। जब हमें पता चलता है कोई बताता है कि इतना कुरान का असर हुआ, तो भी हमारे लिए कितनी खुशी का, और ऐसा लगता है जैसे हमारी कोई चीज को अच्छा कह दिया ना, हमारे लिए कितनी ऑनर की बात होती है। और जब बताया जाता है इसमें ये बातें देखें, आज ये सारी बातें वाकई सच हो गई और ये आज इंसान को पता चला और ये देखो, तो कितनी खुशी, तो ये हमारे लिए एक शर्फ की चीज है पूरी उम्मत के लिए, और कुरैश के लिए भी था जाहिर है, क्योंकि कुरैश के पास सबसे पहले ये किताब आई और उनकी जुबान में आई, उनके सारी दुनिया मोहताज थी उनकी जुबान की, फिर हो गई और सारी रहती दुनिया तक कयामत तक मोहताज ही रहेगी इस जुबान की, ये कुरैश की जुबान में उतरा, तो कितना बड़ा उनके लिए भी शर्त था। तो दोनों माने से आप समझ आ गई, आपको नसीहत भी ले, नसीहत लेके फिर कौम से मुराद कुरैश और उम्मत ले तो क्या माना बनता है, और शर्फ से मुराद ले इसको जिक्र को कि ये शर्फ है आपके लिए और आपकी कौम के लिए। वसौफ तुसअलून, हाँ जी ये भी अब जवाब देना पड़ेगा, जब जाहिर है एक शर्फ दिया अल्लाह ताला ने, एक इज्जत दी अल्लाह ताला ने, एक नेमत दी है, एक नेमत है ना, मानते हैं आपके नहीं मानते, जाहिर है अल्लाह ताला की जब रहमत उतरी है और अल्लाह ताला ने एक शर्फ दे दिया, एक ऑनर दिया, तो ये एक नेमत है ना, एक नसीहत का पैगाम उतार दिया, तो ये एक नेमत है ना। हाँ जी, तो नेमतों का सवाल होना है कि नहीं, सुम्मा लतुसअलन्ना यौमा इज़्ज़िन अनिन नईम, फिर जरूर बर जरूर ब जरूर तुम पूछे जाओगे नेमतों के बारे में, सवाल किया जाएगा, और यहाँ पे भी वसौवा तुसअलून, और तुमसे अनकरीब सवाल किया जाएगा, पूछे जाओगे, क्या पूछा जाएगा, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है बताएं। कुरान की ना, तो क्या पूछा जाएगा कुरान के बारे में, हिफ्ज किया था कि नहीं, या आगे पीछे से इसका टेस्ट लिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, आप कुरान पे ईमान लाए कि नहीं, ईमान लाने का समझते हैं? हाँ जी हम सारे ईमान लाए, ईमान लाने का मतलब भी पता है, आपने माना जो भी हर चीज इसमें थी, मानते कैसे, हमें तो पता ही नहीं था इसमें है क्या, बस खाली खुली कह दिया कि हाँ मानते हैं हम, ईमान रखते हैं, वो कोई चीज कुरान है ना, एक किताब हो जो हमारे घर में पड़ी हुई है ना शेल्फ में खूबसूरत गिलाफ है, हाँ, हम उसके ऊपर ईमान लाए हैं, उसमें है क्या, आपको क्या पता, अब भाई मानना, आपको कहे आप मानते हैं कि सूरज मशरिक से निकलता है, आपको पता होगा तो फिर ही आप कहेंगे ना, ऐसी बात के ऊपर कह देंगे पता ही नहीं हो कोई चीज का, आप कहे हाँ हम मानते हैं, तो बस ईमान लाना समझ के, शऊरी ईमान की बात हो रही है, सिर्फ जुबानी बातें नहीं, शऊरी ईमान इसके बारे में सवाल होगा, और वो बगैर समझे नहीं हो सकता कि आप ईमान लेकर आ जाए, क्योंकि वो शऊरी नहीं होगा फिर, इसीलिए देखे ना जो शऊरी तौर पे ईमान लाते फिर वो मुसलमान हो जाते हैं, उनकी जिंदगियां ही बदल जाती हैं, शऊरी ईमान है ना, वो हम वहीं के वहीं हैं जब से पैदा हुए, हमने शऊरी ईमान ही नहीं लेकर आए, समझा ही नहीं, जो समझने लगता है उसकी तो दिल पे ये कुरान उतरता है, तो इसका सवाल होना है, और फिर इसमें अमल किया कि नहीं ये भी सवाल होगा। हाँ जी, अमल कितना किया? नहीं, अमल तो बहुत मुश्किल है, वो नहीं हमसे होता। ये जवाब देना, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि सवाल किए जाओगे। हम तो अभी इसी बहस में लगे हुए ना, हमारे यहाँ अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, ये फर्ज है, ये सीखना फर्ज है। नहीं, जो पांच अरकान है इस्लाम के, उनमें तो कहीं पे भी नहीं है कि कुरान पढ़ा जाए। अच्छा, अल्लाह पर ईमान लेकर आया तो उसके कलाम पे ईमान नहीं लाओगे? और क्या हर चीज वो पांच अरकान के अंदर ही है? अल्लाह ताला ने तो सच बोलने को भी फरमाया, तो झूठ बोला करोगे, वो पांच अरकान में से तो नहीं है सच बोलना। तो ये कैसी जहालत की बातें। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपनी आंखों से खुद पढ़ लें, ये देखें, सौफ तुसअलून, इसके बारे में सवाल किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये एक नेमत दी है, इसके बारे में वो पूछेगा अमल किया था या नहीं। अच्छा चलो भी अमल भी कर लिया, अगला सवाल क्या है? या पैगंबर तो नहीं आने थे? पैगंबर तुम्हें एक काम देके गए थे, इस कुरान में भी ये काम लिखा हुआ है, या तुम्हें उम्मत वसत बना के उठाया गया, अगर लोगों को तुम मारूफ की हुक्म दो और मुनकर से रोको, तो ये तुमने अपना फरीजा अंजाम दिया? ये कुरान को आगे पहुंचाने का फरीजा ये अंजाम दिया, इसको आगे पहुंचाया, इसके लिए को कोशिश की, कहीं बूथ लगाते, लोगों को बुलाते, आओ कुरान की तरफ, आओ कुरान की मैं दावत देती हूं आपको। तुमने हर चीज की, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कितनी तरह की बातें करते हैं, झूठ भी मिलाते हैं, सच भी धोखा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी ऐसी करते हैं, ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं, ऐसे चीजें करते हैं कि बस हमारी चीज बिक जाए। कुरान के बारे में तो हर खैर की बात सच है, लेकिन तुम इसको लेके नहीं कभी खड़े हुए। हमें तो आता ही नहीं ये काम, हमें आता ही नहीं, हमें बोलना भी नहीं आता, हमें कुछ करना भी नहीं आता, लिहाजा ठीक है कोई बात नहीं, ये भी पूछा जाएगा। आगे पहुंचाया, ये पांच हकूक हैं इस कुरान के, इसके ऊपर ईमान लाना, इसको समझना, इसके ऊपर अमल करना, इसको आगे तक पहुंचाना, सीखा समझा। तो ये कुरान हिफ्स करने के लिए नहीं आया, ये अल्लाह ताला ने नहीं सवाल करना कि आपने हिफ्स किया। हिफ्स इसलिए हम करते, हमें वो बातें याद रहें, क्योंकि जो चीज़ जाहिर याद की भी है जहन में, तो वो अमल के वक्त वो याद आ जाएगी, वो कुरान में तो ये है, इसलिए हिफ्स करते। इसलिए नहीं कि हिफ्स के तमगे ले लो, बस हाफिज बन गए, हाफिज फलां भी हाफिज, फलां भी हाफिज, वो तो मेरा बच्चा हाफिज बन गए, बस इसके ऊपर मैं, मुझे बस बैज मिल जाए, मेरे इतने बच्चे हाफिज हैं। भाई हिफ्ज तो इसके अंदर है ही नहीं है, इसके हकूक में ये सवाल नहीं है, हिफ्ज किसने किया, हमारी दौड़ और हमारा जोर सारा किस पे, हिफ्ज कर लें। अबे मैं लोगों को फखर से बता सकूं मेरे बच्चे ने हिफ्ज किया है, इसकी पार्टी हो जाए और सारी जिंदगी के लिए हाफिज नाम चिपक जाए इसके साथ, हाफिज साहब कहलाएं, बस काम पूरा हो गया आपका, हिफ्ज कर लिया तो ना उसकी समझ है, ना उसके ऊपर कोई अमल है, ना उसको आगे फैलाने की कोई कोशिश है, उसको अगर किसी ने हिदायत का पैगाम ही है उसमें जो है वो समझा, तो हिफ्ज करने का क्या फायदा? तो तोते को हिफ्ज करा लें आप, वो तोते को भी सामने जो दो बातें करते रहे ना, वो ही रिपीट करता जाता है। तो हिफ्ज मकसद नहीं है, हिफ्ज सिर्फ इसलिए कि हमें अमल के वक्त याद रहे, हमें पता हो मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया। तो ये एक नेमत है और इसकी कदर यही है कि हम इसके हकूक अदा करें। लेकिन ना आपके वालदेन, आप कहते मैं जी इनकी बड़ी कदर करती हूँ, उनका हक अदा ही ना करें, उनको फेंका हुआ एक तरफ, उनकी बात ही नहीं सुनते, उनको कभी पूछते ही नहीं, तो आपने उनकी क्या कदर की? हम कहते हैं कुरान की हमारे दिल में बड़ी कदरों कीमत है, ये कदरों कीमत है कि इसको छोड़ रखा है, इसको पूछते ही नहीं है आप, कभी कोई काम करने से पहले इससे भी मशवरा करते? कुरान क्या कहता है? मैं ये कारोबार हलाल है कि हराम है ये कुरान में देखूं, मैं ये खा सकती हूँ पी सकती हूँ ये कुरान में देखूं, मैं रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करूं ये कुरान में देखूं, मैंने बातें कौन सी करनी है और कौन सी नहीं करनी ये कुरान में देखूं, मैंने लिबास कैसे पहनना है कैसे नहीं पहनना ये कुरान में देखूं, मैंने फकीरों मोहताजों के साथ कैसा सलूक करना है ये कुरान से मैं सीखूं। कभी इसके लिए खोलते? हमने तो छोड़ रखा इसको, साइड पे डाला हुआ। तो कयामत के दिन ये कुरान शिकायत करेगा इंसान की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुरान तुम्हारे हक में हुज्जत बनेगा या खिलाफ हुज्जत बनेगा, दोनों में से एक जरूर होगा। या तो हक में बोलेगा, वहां पे खड़ा होके कहेगा अल्लाह ताला के सामने सिफारिश करेगा, या अल्लाह इसने मुझे इमाम बनाया, या अल्लाह ये इसने मेरे लिए वक्त निकाला, या अल्लाह ये मुझे पढ़ता था सीखता था समझता था। तो इसको पढ़ना, इसके ऊपर ईमान रखना, इसको सीखना, इसको समझना, इसको अमल में लेकर आना, इसको आगे पहुंचाना, इसके ऊपर वो सिफारिश करेगा इंसान की। इसके साथ कोई दो वक्त लग जाए हमारे तो हमें मुश्किल हो जाती। टेस्ट क्यों देते हैं आप? वो टेस्ट इसीलिए तो देते हैं आप थोड़ी देर बैठ जाए इसके साथ, इसलिए नहीं देते कि हमें को बहुत आपको कोई फेल करने का या पास करने का नंबर देने का हमें बहुत शौक है। वो तो एक जरिया है आपको बिठाने का, आप खोल लें जरा इसको। वैसे तो हम खोलेंगे नहीं, चलो इस वजह से ही खोल लें। अगर मेरे दिन के अंदर पहले 1 घंटा कुरान के साथ गुजरता था तो अब 3 घंटे गुजर रहे हैं, इस पे खुश नहीं है हम। हमें यह कि हो टेस्ट से हमारी बड़ी जान जाती है, टेस्ट ना दिया करो तब हम इस कुरान की तरफ आ जाएंगे। अगर वाकई हर सुल आखिर और हर सुल दुनिया हमने पढ़ा था ना, अगर वाकई हर सुल आखिरा के लिए कर रहे होंगे, हर से दुनिया के लिए कर रहे होंगे, तो मुझे परवाह भी ना होगी कि मेरे नंबर कितने हैं। मेरे हर सुल आखिरा में मेरे नंबर बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक एक मिनट को गिनती हूं कि मेरे रब के पास ये लिखा जा रहा है, किसी को भी नहीं पता मैं अपने घर में कितनी देर लगा रही हूं। मैं सारा दिन बैठी हुई हूं, आधा दिन बैठी हूं, 1 मिनट बैठी हूं, मेरे रब को पता है। मैं 1 मिनट बैठी हूं और मेरे 25 नंबर आ गए, वो ज्यादा फायदेमंद है। या मैं 4 घंटे बैठी हूं, मेरे 4 नंबर कट गए फिर भी, वो ज्यादा फायदेमंद है। खुद आप अकलमंद है बताइए, लेकिन फिर भी अफसोस ही नहीं जाता, हाय नंबर ऐसे हो गए हो, तो हमने तो पढ़ना ही नहीं, अब हमारे नंबर काट लेते हैं। हमने तो पढ़ना ही नहीं, हमें 1 ग्रेड नहीं दिया, हमने पढ़ना ही नहीं, हमें तो सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे। अबव हूं इससे खुदा के लिए, अब इतनी दफा कुरान पढ़ चुके, या हम अब 25वें पारे पे आ गए, अभी भी अगर हम वहीं खड़े हुए हैं तो हम क्या कर रहे हैं? चीटिंग कर करके टेस्ट कर रहे हैं, जरा सा मैं देख लूं क्या है ये नंबर, क्या अल्लाह ताला इसका सवाल करेगा तुम्हारे कितने नंबर आते थे और सर्टिफिकेट तुम्हारे पास कितने हैं? लाओ दिखाओ सर्टिफिकेट है या नहीं है, शील्ड है या नहीं है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे नंबर कम हो गए, हाय हाय पिछली ग्रेजुएशन में हमें ये किया था तो हमने नहीं, अब इस तरह पढ़ना तो ऐसे हो गया, तो हमें अब ना बुलाना अगर हमें ऐसे किया तो, अगर हमें सर्टिफिकेट नहीं देना तो फिर हमसे ना बात करना, हमें बुलाएं भी ना। इतनी छोटी हकीर चीज के लिए हमने सौदा करा, कितने छोटे के ऊपर हम बिक गए, एक कागज का पुर्जा, एक सर्टिफिकेट, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर, खुदा के लिए इससे ऊपर उठें, अपनी सोच को अपने जहन को खोलें और हर साल आखिरा में क्या लगा रहे हैं वो देखें, ना कि नंबर नंबर नंबर, सिर्फ हर साल दुनिया है। 4 लोग देख लेंगे ना, कह देंगे आपको बहुत लायक हैं आप, उसके बाद क्या है? अगर ये कुरान अमल में ना आया, अगर हमने इसको समझा ना, अगर हमने इसको फैलाने की कोशिश ना की, हमसे ये सवाल होने हैं, हमने इसको पढ़ना ना सीखा सही, ये सवाल होगा। एक अल्लाह का कलाम है, उसके ये हकूक अदा ना किए, इसके ऊपर पूछ होगी, डिग्रियों नंबरों के ऊपर नहीं होगी। लेकिन हमारा दिमाग अभी तक उसी के अंदर, जिससे बात करो हाँ हम आ जाएंगे, लेकिन आप टेस्ट ना दिया करें, खुदा के खौफ करो, ये कहते हुए भी सोचो ये टेस्ट क्या चीज है। वो मुझे नहीं परवाह टेस्ट की, वो मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए बस। मेरी जिंदगी लग जाए इस कुरान के साथ, मेरी आखिरी सांस तक ये कुरान मेरे साथ रहे, मुझे इसकी परवाह हो, मेरे से ये नेमत कहीं छूट ना जाए। अल्लाह मुझसे ये नेमत लिए ना लेना इसकी फिक्र हो। हमारे तो दिमागों पर टेस्ट ही सवार हो गए। क्या हो गया है? मुझे अफसोस होता है जब मेरे स्टूडेंट ये बात करते, मैं इनको क्या सिखा रही हूँ, ये क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद यही होता है, अल्लाह हमने अपना काम कर दिया पहुंचाने का, बस इनको नहीं समझ आती तो क्या करें, आप सर खपा नहीं सकते। जब ये देखते हैं लोगों के कामों को मेरे पास आते हैं लोग आके मुझे बताते हैं, शायद उन लोगों को भी पता नहीं होता कहाँ कहाँ से शिकायतें मेरे पास आती हैं, आपके स्टूडेंट ये कर रहे थे, आपकी स्टूडेंट ने ऐसा किया। फिर यही होता है, अल्लाह मैंने तो इनको ये नहीं सिखाया था, मैंने तो इनको ये नहीं बताया था, मैं क्या कर सकती। ऐसे उल्टे सीधे काम के जो सुन के भी दुख होता है, कब से पढ़ रहे हैं, कब से बताया जा रहा है, फिर भी वो ही चीजें, फिर भी वो काम आज तक ना छूटे। हाँ कोई बशरी कमजोरियां, ये नहीं कहते कुरान पढ़ के कोई बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है, लेकिन ढिटाई के साथ वहीं के वहीं वो ही काम करते रहना। अल्लाह अकबर। तो याद रखें कयामत के दिन ये कुरान का सवाल होगा और कुरान पढ़ने वालों से भी सवाल होगा। हम फारिग नहीं होगा कि हमसे तो सवाल होना नहीं, क्योंकि हम तो कोर्स में आ गए हैं जी, हमने इतने कोर्स कर लिए, सबसे सवाल होना। जिन्होंने इसको छोड़ा हुआ है उनसे भी होगा, जो इसको पढ़ रहे हैं उनसे भी होगा, जो इसके ऊपर अमल कर रहे हैं करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे भी होगा। कितना किया अमल और कैसा अमल किया और किसके लिए वो अमल किया? क्या वो अमल भी कहीं दुनिया के लिए ही तो नहीं था कि इसको दिखा दें, इसमें शोहरत पा लें? ये अमल भी इसलिए कर रही हूं क्योंकि सारे मुझे नेक बीबी समझ लें, खूबसूरत की रात भी इसलिए हो रही ताकि लोग मेरी आवाज की तारीफ करें, हिजाब भी इसलिए लिया जा रहा है कि लोग मेरी तारीफें करें, दीदी देखो कितना कुरान पे अमल कर लिया इसने। क्या अमल भी कहीं दुनिया के लिए ही तो नहीं हो रहा? क्या लोगों को आगे पहुंचाने में भी क्या यही तो नहीं है कि मुझे बैजेस मिल जाए? कितनी अच्छी वॉलंटियर थी, इसने काम बहुत ज्यादा किया, मुझे स्टेज पे बुलाया जाए, मेरा नाम लिया जाए, मेरी शोहरत हो जाए, मेरे ऊपर तालियां बज जाएं। वो बच जाएंगी इस दुनिया में, शोहरत भी हो जाएगी, स्टेज पे भी बुला लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या है? कयामत के दिन जीरो ही नहीं है, माइनस में है, क्योंकि आप वो हदीस आपको पता होगी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन जिन लोगों का सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा उनमें एक आदमी वो भी है जिसने इल्म हासिल किया, लोगों को सिखाया और कुरान करीम को पढ़ता था, उसको लाया जाएगा और अल्लाह ताला नेमते गिनवाएगा उसको, मैंने तुझे ये दी दे, वो पहचान लेगा नेमतों को। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने नेमतों के होते हुए क्या अमल किया? वो कहेगा मैंने इल्म हासिल किया, मैंने दूसरों को सिखाया, मैंने तेरी रजा के लिए अल्लाह कुरान को पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने झूठ कहा, तूने इसलिए इल्म हासिल किया कि मुझे आलिम कहा जाए, तूने कुरान इसलिए पढ़ा कि तुझे कारी कहा जाए। सो ये हो गया, ये दुनिया में मिल गया जिसको जो मिलना था, जो नंबरों के लिए कर रहे हैं उनको दुनिया में नंबर भी मिल गए, जो सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे, यही चाहिए ना, मिल जाएंगे। लेकिन कयामत में कुछ नहीं है, फिर आखरत में कुछ नहीं है, क्योंकि ये हदीस बताती है कि फिर हुक्म दिया जाएगा कि इसको मुंह के बल घसीटा जाए, यहां तक इसको जहन्नुम में डाल दिया जाए। इतना नोबल काम है, इतना इज्जत वाला काम है, इतना बड़ा नेकी का काम है, लेकिन उस दिन इसी वजह से कि कुछ और ही कामों की वजह से वो ये करता रहा, किसी और ही चीज के पीछे वो भागता रहा, किसी और ही, उसकी नियत ही कुछ और, उसकी तलब ही कुछ और थी, उसका मकसद ही कुछ और था, उसकी हिर्स ही किसी और चीज के लिए थी, तो वो तो ठीक मिल गई, वो तुम्हें मिल गई दुनिया में, यार अब जहन्नुम। इसके लिए तो इखलास चाहिए, तो सिर्फ पढ़ना सीखना काफी नहीं, जो पढ़ने सीखने वाले भी हैं यानी उनसे भी हिसाब होगा कि इखलास भी था कि नहीं था। तो हम इससे अब बरी जिम्मा नहीं हो जाएंगे कि हमने कोर्स कर लिया तो जी बड़े काफी हो गए हम। अब ये भी है इखलास के साथ किया था कि नहीं, क्या तुम्हारी मकसद क्या था, तुम्हें चाहिए क्या था इससे, तुम्हारी नजर किस चीज पे थी? वैसे हम सब कहते हैं कि नहीं, हम तो किसी और चीज के लिए, ना सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं ना किसी चीज के लिए कर रहे हैं, लेकिन हाँ नंबर नंबर तो मुझे जरूर चाहिए। तो देखें ये सब सवालात होंगे वहां पे, ये सब देखा जाएगा, और देखने वाला कौन है, वो जो अंदर तक की बातों को जानता है। मैं सेटिस्फाई हो सकती हूँ, कोई और सेटिस्फाई हो सकता है, हम किसी दुनिया वालों जितने भी लोग हैं उन सबको बड़े अच्छी तरह मुतमईन कर सकते हैं। मेरी नीयत तो बहुत अच्छी, और मैं तो बहुत ज्यादा अमल करने वाली, और मैं तो इतनी कुरान की बस सारा बात, कुरान ही तो कुरान होता है मेरी जुबान पे। लेकिन जिसकी अदालत में हमें खड़ा होना है ना, मुझे भी और आपको भी, उसकी नजर दिलों पे है, दिल में क्या था वो बहुत अच्छी तरह जानता है, उसको धोखा नहीं दे सकते, ये धूल झोंक सकते हैं इंसानों की नजरों में। या अल्लाह ताला के सामने हम सब नंगे हैं कि इंसान कोई चीज छुपा ना सकेगा। अभी भी हम अपनी नीयतों का भी जायजा लें, अपने अमल का भी जायजा लें, अपने इस पढ़ने का भी जायजा लें, और क्या कोशिशें हमारी हो रही हैं इसको फैलाने में, उसका भी जायजा लें, क्योंकि वसौफ तुसअलून, हमसे सवाल किया जाएगा। और जो नहीं बिल्कुल ही इस तरफ आ रहे, वो भी देख लें कि उसके बाद फिर कहीं ये ना हो कि शैतान साथी बन जाए, वो उसने फिर इस रास्ते को इतना मुश्किल बना देना है ना, इस सिराते मुस्तकीम को, कि वो फिर और इंसान समझता रहे कि जी मैं बड़ा ठीक हूं, उसका भी क्या अंजाम है, वो भी देख ले। तो इस अहमियत को समझे, सोचें ये मेरे लिए शर्फ है, ये तो मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अजीम तोहफा दिया, इसकी मैं ये कदरदानी कर रही हूं। कपड़ों की भी कदर है, चीजों और चीजों की भी कदर है, जेवरात की भी कदर है, और भी जितनी भी चीजें दुनिया की उनकी बड़ी कदर है, हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, कुरान कितना मिले उसमें मिनिमम तरीन सबसे छोटा कोर्स बता दें, जिसके अंदर कुछ भी ना टाइम देना पड़े, बस हफ्ते में जाके मुझे जरा सी देर के लिए, वो भी बहुत है मेरे लिए। पैसों के लिए भी यही कहा करें, खाने पीने के लिए भी यही कहा करें, और चीजों के लिए भी यही कहा करें कि नहीं जी मुझे तो बस, और हाँ जो एंटरटेनमेंट है उसको भी कहा करें, कभी कभी मिल जाए तो ठीक है, नहीं वो हर हफ्ते होनी चाहिए, हर वीकेंड होनी चाहिए, वो इतने घंटों की तो जरूरी नहीं चाहिए। बाकी चीजों के लिए क्यों नहीं हम कहते, इसमें क्यों मिनिमम पे राजी होते हैं? और बाकी चीजें उनको कोई एंड नहीं, वो तो 100 कपड़े भी मेरे पास होंगे तो मैं कहूंगी 102 होने चाहिए। अल्लाह ताला हमें माफ करे, बस अलमन अरसलना मिन कबलिका मैं रसूलिना, और पूछिए जिसको भेजा हमने आपसे पहले अपने रसूलों में से, अजालना मिन दूने रहमानी आलिहतन यअबदून, क्या हमने उनको लिए बनाए रहमान के सिवा कुछ इलाज जिनकी बंदगी की जाए? आप पूछें, पिछले रसूलों को भी तौहीद का ही पैगाम दिया गया, क्या उनको कोई और बताएगा कि किसी और को वो पूजे? नहीं, पिछले रसूलों को भी यही कहा गया कि वो एक अल्लाह की इबादत करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पूछ सकते थे? असल में मुशरिकिन को समझाने के लिए भी बताया जा रहा है, दूसरे मेराज के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर सकते थे, तीसरे ये कि उनकी किताबों से पता चलता है कि उनको भी तौहीद का ही पैगाम दिया गया, और वो भी एक अल्लाह की इबादत करते थे। अब आगे मूसा अलैहि सलाम और फिरौन का वाक्या जो हम कई दफा पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उसमें मुख्तसरन गुजरेंगे। वलकद अरसलना मूसा भी आयातिना इला फिरौन व मलेही, और अलबत्ता तहकीक, ये तीन ताकीदें वा ल और अद, हमने भेजा, यकीनन हमने भेजा मूसा अलैहि सलाम को अपनी आयात के साथ, कौन सी आयात? यदे बैजा और आसा, ठीक है, इन आयात के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा। फकाल इन्नी रसूल रब्बिल आलमीन, उन्हें जाके फरमाया कि मैं रसूल हूँ रब्बिल आलमीन की तरफ से, क्योंकि रब, फिरौन अपने आप को रब कहता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि वो जो आलमों का रब है मैं उनकी तरफ से रसूल हूँ। फलम्मा जाए अम्बिया आया थी ना, फिर जब लाया उनके पास हमारी निशानियां, यानी मूसा अलैहिस्सलाम लाए इदा हम मिनहा यضحकून, तो वो इस पे हंसते थे। हंसते क्यों थे? क्योंकि इंसान जब किसी चीज को हकीर करना चाहता है ना, तो तंज के तौर पे भी हंसता है और दूसरों को उससे हटाने के लिए भी हंसता है कि ये तो कोई चीज ही नहीं। तो उन्होंने इसको हंसी का निशाना बनाया, इस्तेहजा किया। जैसे आज भी लोग कई चीजों को अल्लाह के अहकाम के पर हंसने लगते हैं। वह मानूरी हिम मिन आयातिन इल्ला ही अकबरु मिन उख्तिहा, और नहीं हम दिखाते उनको कोई निशानी मगर ज्यादा बड़ी होती थी अपनी बहन से। बहन का मतलब क्या? यानी पिछली निशानी से ज्यादा बड़ी होती। और ये निशानियां कौन सी थी? यानी मूसा अलैहि सलाम उनको पहले से कह देते थे कि अब तुम्हारे ऊपर तूफान आने वाला है, अब तुम्हारे ऊपर कहत आने वाला है, अब उसके बाद तुम्हारे ऊपर टिड्डियों का हमला होगा, अब इसके बाद तुम्हारे ऊपर मेंढकों का हमला, फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर खून का अजाब आएगा, फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर मतलब इस तरह से सुसरियों और जुओं का अजाब आएगा, जिनको अल्लाह ताला ने इसमें कुरान पाक में फरमाया, फरसलना अलैहिम तूफान अबल जराद अबल कुम्बल अव दफादे व दम आयात मुफसलात। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये सारे अजाब भेजे, और हर अजाब के ऊपर वो आते वक्त कहते थे कि ए मूसा तू दुआ कर तो हम इसके अंदर से निकल जाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो उस हटा दिए जाते थे, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग वही काम करते थे। वअखदना हम बिल आदा बिल आला हम यरजून, हमने उनको इन अजाबों में इसलिए पकड़ा ताकि वो लौट आए, लेकिन वो फिर भी रुजू नहीं करते थे। और वो क्या कहते थे? वकालू या अय्युहस साहिरू, तो वो कहते थे ऐ जादूगर उदू लाना, यानी मूसा अलैहि सलाम को जादूगर कहते थे। जादूगर इसलिए कि वो कहते थे कि एक तरह से उनको तंज करते थे कि तू तो जादू करने वाला है। उदू लाना रब्बा का, दुआ कर हमारे लिए अपने रब से, तो रब तेरा है। यानी अब ये नहीं कहते थे कि हमारा रब, नहीं जैसा हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, तू तेरा ही रब है, तू उसे दुआ कर। बिमा आहिदा इंदक, उस अहद की बिना पर जो उसने तुझसे किया। कौन सा अहद? या तो नबुवत मुराद है कि इस वजह से कि जो आपको अल्लाह ताला ने मकाम दिया है, या दूसरा मूसा अलैहि सलाम इसलिए करें कि अल्लाह ताला ने जो आपसे निजात का वादा किया हुआ, तो उस वजह से हमारे लिए दुआ कर। इन्ना लमुहतदून, तो अलबत्ता हम हिदायत पाने वाले हैं, यानी हम हिदायत पे आ जाएंगे जब तुम दुआ करोगे। और लेकिन उसके बाद क्या होता था? फलम्मा कशफना अनहुमुल अजाबा इदा हुम यंकुथून, तो जब हम खोल देते थे उनके ऊपर से अजाब, ये हटा देते थे अजाब, तो वो फिर वही हरकतें करते थे। वनादा फिरआउन फी कौमी, और फिरौन को जब थ्रेट हुआ कि ये कहीं लोग मूसा अलैहि सलाम की तरफ ना हो जाए मायल, क्योंकि इनकी दुआओं से अल्लाह ताला अजाब हटा देता था, तो उसको ये खतरा पड़ गया कि ये ना हो कि ये लोग ईमान ही ले आए इनके ऊपर। तो उसने अपनी कौम को बुलाया, मुनादी की वहां पे तो सारे जमा हो जाए, और उसने कौम से एक खिताब किया। क्या कहा? काला या कौम लैसा ली मुल्कु मिस्र, ए कौम क्या मेरे लिए नहीं है मिस्र की बादशाहत कि मैं जो मर्जी इसमें करूं, ये मेरी बादशाहत है यहाँ पे। वहादी नहारु तजरी मिन तहती, और ये नहरें मेरे नीचे से बहती हैं, यानी मैं नहरों का भी मालिक हूँ, या मैं नहरें मेरे कब्जे में है। अफला तुम सिरून, क्या फिर तुम देखते नहीं हो? क्या बताना चाह रहा है कि देखो मैं कितनी बड़ी चीज हूं, तो मैं बड़ा हूं। अम अना खैरु मिन हाजा, क्या फिर मैं बेहतर हूं? क्योंकि मेरे पास पावर है, मेरे पास बादशाहत है मिस्र की, और मेरे मेरे कहने के ऊपर नहरें बह रही हैं, यानी मेरे कहने पे तो नहीं लेकिन मेरे कब्जे में ये नहरें हैं, तो मैं बेहतर हूं या ये अल्लदी हुआ महीन जो हकीर है? किसको कह रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम को। वला यकादु यबीन, और अपनी बात भी वाजे तौर पे नहीं कर सकता, क्योंकि बस तफसीरों में मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में चूंकि लुकनत थी इसलिए वो कहने लगा, और वो बचपन में थी, तो अब वो उसका ताना दे रहा है कि ये बेहतर है हमें, यानी उसने भी किस चीज से अपना कंपेरिजन किया जो हमने पहले बात की थी कि माल और बादशाह तो मेरे पास है, तो मैं बेहतर हूं कि ये बेहतर है, हालांकि उनके पास नबूवत थी जो हर माल और हर उससे बेहतर है। फलौला उल्किया अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हबिन औ जाअ माहुल मलाइकतु मुक़तरनीन, क्या क्यों नहीं इसके ऊपर उतरते कंगन सोने के इसके ऊपर आते, या फिर इसके साथ फरिश्ते होते जो इस प्रोटोकॉल के साथ इसके आगे पीछे होते, और फरिश्ते इसके साथ चल रहे होते, और ये को बड़ी चीज होता, यानी उसके नजदीक ये था कि सोने के कंगन उस वक्त बादशाह पहना करते थे, तो क्यों नहीं इसके पास सोने के कंगन है या इसके साथ फरिश्ते हैं? क्योंकि यही चीजें उनके नजदीक बड़ी थी। फस्तखफ्फ कौमहू फअताउहू, तो उसने अपनी कौम को हल्का पाया। हल्का पाने से यहाँ पे मतलब क्या है? यानी अपनी कौम को बेवकूफ बना लिया, एक तो ये इसका मतलब है कि बेवकूफ बना लिया, या ये कौम को उसने बेवजन कर दिया। वो उनकी हकीकत, उनकी राय को बेवजन कर दिया, उनको सोचने का मौका तक नहीं दिया, उनकी उनको बेवकूफ बनाया ना जैसे। तो फअताऊहू, तो उन्होंने उसकी इताअत कर ली, वो भी सोचे समझे उसके पीछे चल पड़े। तो एक तो माना कि उसने अपनी कौम को बेवकूफ बनाया, दूसरा माना अपनी कौम को आसानी से अपना ताबे बना लिया। इससे हमें पता चलता है कि एक लीडर जो होता है, अगर वो बिगड़ा हुआ है, तो अक्सर जो कौमें होती हैं अपने लीडर को देख के चलती हैं और अंधी हो जाती हैं, ये नहीं सोचती कि ये सही भी हमें कह रहा है या नहीं, ये हमें सही तरह रास्ते पे भी लेके जा रहा है या नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम हमें क्या कह रहे हैं और हम इसके रास्ते जाए, वो अंधाधुंध उसके पीछे चल पड़े। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, बेशक वो थे ही फासिक कौम, वो खुद ही फासिक थे, वो खुद नाफरमान थे, इसीलिए वो इसके कहने पे चले, वरना जरा भी अपनी अकल इस्तेमाल करते तो वो इसके रास्ते पे ना जाते कभी। फलम्मा सफूना, तो जब वो गुस्से में लाए हमको, इंतकमना, तो हमने इंतकाम ले लिया, मिनहुम उनसे, फगरकना हम अजमाइन, तो हमने गर्क कर दिया उन सब के सबको। आप देखें कितनी दिलचस्प बात है ना, कि उसी फिरौन ने कहा था कि हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये तो नहरें मेरे कब्जे में मेरे हुक्म से हैं, तो उसी नहर के अंदर वो गर्क हुआ, इसके कब्जे में होती तो वो उसमें गर्क तो ना होता। अल्लाह हु अकबर, जब वो अपने करतूतों से हटे नहीं, तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे इंतकाम ले लिया। फजअलनाहुम सलफन, तो बना दिया हमने उनको पेश रो, यानी भूली बिसरी दास्तान, गए गुजरे लोग, पिछले लोग गुजर चुके, जो यानी वो सरवाइव भी नहीं कर सके, अब जो अपने आप को इतना बड़ी चीज कहता था। वह मथल लिल आखिरीन, और बाद वालों के लिए उनके अंदर एक मिसाल छोड़ दी अल्लाह ताला ने, कि देखो इनका अंजाम कैसे होता है जो ऐसे तकबर करते हैं और जो अंबिया की तालीमात को पीछे डालते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين